الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ سبق آموز خبریں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کی سبق آموز خبروں میں جو کچھ ہم لے کر آئے ہیں، اس کی پہلے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ ترتیب وار چلنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی سبق آموز خبروں میں کیا کیا ہے۔
اقوام متحدہ کے خوراک سے متعلق ادارے نے رواں برس 70 لاکھ افراد کے بھوک سے مر جانے کا انکشاف کیا ہے۔ کراچی میں ڈاکو لنگر دینے کے بہانے گھر کا صفایا کر گئے۔
جب میں اندر انٹر ہوا تو یہ بالکل یہاں پہ پورا جو ہے سامان وغیرہ سب بکھرا ہوا تھا اور یہ چیزیں ساری باہر گری ہوئی تھیں۔
قومی تہذیب و تمدن کو نقصان پہنچنے کی ایک اور وجہ موجودہ ڈیجیٹل سماجی روابط کا نیٹ ورک یعنی سوشل میڈیا بھی ہے۔ سماجی معاونین کہتے ہیں کہ کامیاب لوگوں میں یہ 5 عادات نہیں ہوتی، اگر آپ میں ہیں تو آپ بھی انہیں فی الفور ترک کر دیں۔ انٹرنیٹ پر معمولی سی بے احتیاطی آپ کو گہرے دلدل میں لے جا سکتی ہے، جس کا انجام سماجی ذلت و رسوائی یا پھر خودکشی پر ہوتا ہے۔
سب سے پہلے آج جو ہم جس کو اپنی جو سمجھے سب سے پہلی جس خبر کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، وہ خوراکی یعنی غذائی قلت سے اس کا تعلق ہے۔ اس وقت دنیا میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ مزید بنتا چل رہا ہے، یعنی پہلے بھی تھا یہ پرابلم لیکن اب یہ مزید بڑھ رہا ہے، اور موجودہ حالات اور واقعات کی وجہ سے، اسپیشلی جب COVID-19 کورونا اور یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں، یہ اور مہنگائی نے اس کو پھر بہت زیادہ یوں سمجھے گا یہ پریشان کن صورتحال ہمارے سامنے اس وقت آ رہی ہے۔ البتہ اس کی پہلے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔
رواں سال 70 لاکھ افراد کے بھوک سے مر جانے کا انکشاف، اقوام متحدہ کی دل خراش رپورٹ۔ اقوام متحدہ کے خوراک سے متعلق ادارے نے رواں برس 70 لاکھ افراد کے بھوک سے مر جانے کا انکشاف کیا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ڈائریکٹر ڈیوڈ بیزلے نے دل خراش انکشاف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس سال اب تک 70 لاکھ افراد بھوک سے مر چکے ہیں اور عالمی وبا کے باعث یہ تعداد دگنی ہو سکتی ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ڈائریکٹر ڈیوڈ بیزلے نے یو این فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ایک کانفرنس میں کہا کہ قحط اور خشک سالی سے بچنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ بیزلے کا کہنا تھا کہ اگر آج دنیا میں دولت کے تناسب کے حوالے سے سوچا جائے تو پھر کسی بچے کو بھوک سے مرنا نہیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں ہر 9 میں سے ایک فرد کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے۔ 2016 سے جنگی صورتحال اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بھوک کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان، صومالیہ، جمہوریہ کانگو، نائجیریا، جنوبی سوڈان اور یمن میں 55 لاکھ افراد کو بھوک کا سامنا ہے۔
یوں تو خبریں کافی ہیں جیسا کہ آپ نے ابتدائی جھلکیوں میں دیکھا، لیکن میرا خود اپنا آج کا ایک ہاٹ ٹاپک اور قدرے تھوڑا سا اس کو ہم وضاحت اور خلاصے کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اس میں میں آپ کی کالز بھی لینے کی کوشش کروں گا، اسپیشلی یہ جو غذائی قلت کے تعلق سے جو ہے، کیونکہ ایک واقعی ایک صدمہ دینے والی اور افسردہ کر دینے والی یہ خبر ہے۔ میں پہلے آپ کے سامنے کچھ اس کی صورتحال بیان کرتا ہوں۔ جو لاسٹ رپورٹ ہمارے پاس تھی اس کے مطابق اس وقت دنیا کی جو حالیہ آبادی ہے یہ 7 ارب 80 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ اچھا، اس میں جو اگنے والی جو غذا ہے، اجناس، جو بھی فوڈ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، چاہے ایگریکلچر کے تعلق سے ہو یا کسی بھی تعلق سے ہو، اس وہ 12 ارب افراد کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ 12 ارب افراد کے لیے وہ غذا کافی ہے۔ 7 ارب 80 کروڑ کی آبادی بتائی جاتی ہے، और 12 अरब के आसपास ये बताया जाता है कि जो गिजाएं हमें मैसर हैं वो 12 अरब अफराद को काफी हैं। इसके बावजूद दुनिया में भूख के शिकार अफराद 96 करोड़ बताए जा रहे हैं, 96 करोड़, और ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स के जरिए ये फिगर भी आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है। दुनिया में गिजाया की जो कमी के जो शिकार हैं, ऐसे लोग जिनको जैसे कि रूखी सूखी गिजा भी मिल रही है और जो इनकी सेहत के लिए नाकाफी है, मिल रही है मगर प्रॉपर नहीं मिल रही है और बहुत कम मिल रही है, इनकी तादाद 1 अरब से जायद बताई जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मजमुई जो गिजाई किल्लत है, जो कमी है गिजाई, वो उसके शिकार जो अफराद हैं उनकी तादाद तकरीबन 2 अरब बताई जा रही है मजमुई तौर पर। अब हम इसका फिगर ले रहे हैं, 41 करोड़ बच्चे भी इन 2 अरब अफराद में शामिल हैं। कहते 2030 में इसकी तादाद 4 अरब के करीब हो जाने का खदशा है। अभी 2 अरब बताई जा रही है 2030, ये 2020 साल है, आगे 10 साल की जो पिछले सालों की रिपोर्ट्स को सामने रखकर अगले सालों का प्लान बयान किया जाता है या जो भी खदशात बयान किए जाते हैं। दुनिया में औसतन 75% गिजा जाय हो जाती है, 45% जो वेस्टेज जो फूड को कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, कुछ मुमालिक में गिजा के जिया की जो परसेंटेज है वो 55-65% है, इतनी गिजा जाया की जाती है, मतलब उसको जाया कर दिया जाता है। दुनिया में जाया होने वाली गिजा की अगर हम टोटल मालियत पर बात करें तो 1.3 बिलियन टन्स एंड वैल्यूड एट यूएस डॉलर जो बनता है वो 1 ट्रिलियन बनता है, इज वेस्टेड और लॉस्ट, ये रिपोर्ट बयान की गई है। यानी दुनिया में जाया होने वाली गिजा की जो मालियत है इसको जो अगर हम कैलकुलेट करते, अगर मैं इसको आसान करूं तो 1000 अरब से जायद की जो मालियत है, अमाउंट है, उस अमाउंट के मुताबिक जो गिजा है ना वो जाय की जाती है। इसी तरह अगर हम आगे इस रिपोर्ट को देखते हैं तो कहते हैं कि ईच डे 25,000 पीपल इंक्लूडिंग मोर देन 10,000 चिल्ड्रन डाई फ्रॉम हंगर एंड रिलेटेड कॉजेज, यानी ये 25,000 पर डे रोजाना की बुनियाद पर, जो इसमें 10,000 बच्चे भी शामिल हैं, ये भूख और इससे मुतालिका चीजों की वजह से वो हलाक हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। सम 854 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर एस्टिमेटेड टू बी अंडर मॉरिस्ट एंड हाई फूड प्राइसेस में ड्राइव अनदर 100 मिलियन इनटू पॉवर्टी एंड हंगर। दुनिया में रोजाना 25,000 अफराद भूख से मर जाते हैं जिसमें 10,000 बच्चे भी शामिल हैं, और मजीद इसकी डिटेल आपने अभी मेरी इस रिपोर्ट में जो मुझे दी गई है वो मैंने आपको बयान करने की कोशिश की है। ये प्रॉब्लम बढ़ता ही चला जा रहा है दुनिया में, जबकि हमारे पास अल्लाह ताला की इतनी नेमत है जिसका हम शुमार ही नहीं कर सकते। बहुत बुनियादी वजह जो इसकी बयान की जा सकती है वो है खाना जाया करना, वेस्टेज ऑफ फूड जिसको हम कहते हैं, और इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो इसराफ के अकाउंट्स में जा सकती हैं, यानी इसराफ हम इसको कह सकते हैं। डेफिनेटली हर बात को इसराफ कहने के लिए फिर इस पर पूरी डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन इसराफ है। देखो कुरान करीम ने इतनी खूबसूरत तरीके से हमारी तरबियत फरमाई, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो फजूल ना उड़ाओ, बेहतरीन उसूल कुरान करीम ने बयान कर दिया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और फजूल ना उड़ाओ। हम खाए पिए और फजूल उड़ाएं, हम पानी पिए तो जाया करें, कोल्ड ड्रिंक पिए तो जाया करें, फ्रूट काटें तो जाया करें, फ्रूट खाएं तो बचाकर जाया कर दें, हमारा खाना हमारे जो बर्तन है, चाहे वो आप कुकर में पकाएं, चाहे वो आप फ्राई पैन में पकाएं, या किसी और बर्तन में पकाएं, आप पतीली में पकाएं, किसी चीज में पकाएं, किसी भी पॉट के अंदर अगर आप अपना खाना तैयार करते हैं तो वो उसके अंदर कई खाना जाया हो जाता है, दस्तरखान पर कई खाना जाया हो जाता है। रोटी का आधा टुकड़ा खाया हमने, अगर चार टुकड़े भी किए हैं या कोई चार टुकड़े नहीं भी करता तो रोटी थोड़ी सी खाई या आधी खाई या पौनी खाई, जितनी भी खाई 45% खाई तो बकिया जाया कर देंगे। सालन किसी होटल में खाएंगे तो वहां ढेरों ढेर खाना, ढेरों ढेर सलाद, ये सब जाया हो रहा होता है। अंदर में निकल तो जाया हो रहा होता है, दावतों में जाए तो खाना जाया हो रहा है, फ्राई जाया हो रही होती है, चार चार फ्राइयां निकाल कर रख लेते हैं, थोड़ा खाते हैं जाया कर देते हैं, समोसे निकाल लेते हैं थोड़ा खाते हैं जाया कर देते हैं, इसी तरह दीगर चीजें कस्टर्ड निकालते हैं थोड़ा खाते हैं जाया कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं। फिर वो जो छोड़ देते हैं उसका जो भी हाल होता है वो बेहाल हो जाता है। एक इतना बड़ा टप लेकर, बहुत बड़ा एक बर्तन लेकर, फिर उसके अंदर वो बिरयानी भी बची हुई जा रही है तो सालन भी बचा हुआ जा रहा है, तो कोल्ड ड्रिंक जो बोतलें खाली थी वो भी उसी के अंदर बादों का फेंक दी जाती है, तो रायता भी उसमें फेंक दिया गया, सलाद भी उसी में फेंक दी गई, ये पूरा एक मतलब के वो बन गया, वो किस किस काम का। ये हमारा कल्चर है, यानी घर के पर्सनल दस्तरखान से लेकर, जो आपके मेरे घर का पर्सनल दस्तरखान है जिसमें हम नाश्ता भी करते हैं, लंच भी करते हैं, हम डिनर भी करते हैं, रात का खाना भी खाते हैं, इसके अलावा भी हम कुछ करते हैं, चाय आप चाय पीते हैं वो भी बचा देते हैं, ये भी आप, ये सब चीजें आपकी आंखों ने भी देखी होगी कि चाय पी बचा दी, बिस्किट खाया खोला, बिस्किट को खुला रख दिया, बिस्किट जाया हो गए, यानी हवा लग जाती है चीजें जाया हो जाती हैं, फिर उसको उठाकर हम डस्टबिन में डाल देते हैं, कूड़े के ढेर पर डाल देते हैं। इतना जाया करते हैं हम लोग, इतना जाया करते हैं कि इसका आप जब ये देखिए कि दुनिया में 2 अरब बताए गए मजमूई गिजाई किल्लत के जो शिकार अफराद है 2 अरब के करीब है। कैलकुलेशन को आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि 7 अरब 80 करोड़, अब मैं मोटा हिसाब कर लें 8 अरब पब्लिक ले लें, ठीक है मोटा हिसाब कर 8 अरब गिजाई जो हमें मुहैया है, गजा हमें जो मुहैया है, जो हमें दस्तियाब अवेलेबल जो फूड है हमारे पास, वो उसकी जो उसका जो अफराती जो क्वांटिटी लेते हैं तो वो 12 अरब, यानी 4 अरब बचे, इतना हमारे पास खाना है, 4 अरब लोगों का बच जाए, और नतीजा ये कि 2 अरब लोग भूख का शिकार बन गए, और इसमें कई लोगों का वो हलाक हो जाते हैं, इंतकाल हो जाता है, वफात हो जाती है, बच्चों को गिजाई चीजें नहीं मिलती। तो ये बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं, इसकी बुनियादी वजह मैंने आपके सामने रख दिया, वो है अल्लाह की अजीम नेमत की कदर ना करना। मैं आपके सामने चंद चीजें ये बयान करने की कोशिश कर रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे कि ये बात जो मैं इस वक्त आपको बयान करूंगा, ये इसको थोड़ा सा अब सीरियस लेंगे तो होगा। देखिए पहले भी ऐसा नहीं कि इस मौजू पर कोई बयान नहीं हुआ होगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ सीरियसली ये है कि हम चीजों को सीरियस नहीं लेते। अगर हम सीरियस लेंगे तो भी देखें हम बहुत सारी फजूल या इन चीजों से बच जाएंगे। मैं आपके सामने कंजुल उमाल की एक हदीस बयान करता हूं, ठीक है सुनिएगा तसल्ली के साथ। हदीस पाक में है, जो खाने के गिरे हुए, ये मैं आपको जो हदीस या जो मैं बातें बयान कर रहा हूं, ये इसमें मेरी नीयत उस तरगीब की तरफ है, उस मोटिवेशन की तरफ है जो हमें इस बात पर उभारे कि मेरे दस्तरखान से कोई खाना जाया ना हो, कोई जर्रा जाया ना हो, मेरे बर्तन से कोई खाना जाया ना हो, मेरी प्लेट से कोई खाना जाया ना हो, या तो वो मेरे पेट में चला जाए या किसी हकदार के पेट में चला जाए, किसी इंसान के पेट में चला जाए, किसी के पेट में चला जाए, जाया ना हो, ठीक है। इसको जरा पेश नजर रखिएगा, हदीस पाक में है, कंजुल उमाल की हदीस में बयान करने जा रहा हूं, जो खाने के गिरे हुए टुकड़े उठाकर खाए वो फराखी यानी खुशहाली की जिंदगी गुजारता है, और इस उसकी औलाद और औलाद की औलाद में कम अक्ली से हिफाजत रहती है। कितनी खूबसूरत और ईमान अफरोज और सबक कामोज ये हदीस है, जरा इस पर गौर करें। हम कसरे शान समझते हैं, हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार ये हम कैसे खा लेंगे। मैं आपको इस पर एक बड़ी खूबसूरत सी हिकायत सुनाता हूँ, बड़ा आपको मतलब इंशाल्लाह आपको आपको लुत्फ आएगा और एक मजे को मजा आ जाएगा। बड़े मशहूर زبردست محدث گزرے, حدیث کے بہت بڑے امام تھے, حضرت سیدنا حدوہ بن خالد رحمت اللہ تعالی علیہ. اچھا, خلیفہ بغداد مامون رشید نے انہیں اپنے پاس دعوت ان کو دی, وہ دعوت میں گئے خلیفہ مامون رشید کے یہاں. تو اب کھانا کھا چکے, اب دربار تھا خلیفہ کا, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہوں گے, کیا کیا ہوگا. جب کھانا کھا چکے تو جو حضرت تھے, حضرت حدوہ بن خالد رحمت اللہ تعالی علیہ, تو وہ جو دانے گر گئے تھے نا دسترخوان پر کھانے کے بعد, وہ انہیں مطلب کہ چن چن کر کھا رہے تھے. مامون نے حیرت ہو کے پوچھا, کہا اے شیخ کیا آپ کا ابھی تک پیٹ نہیں بھرا, یعنی یہ جو آپ دسترخوان سے دانے چن چن کر جو کھا رہے ہیں. فرمائے کیوں نہیں. حضرت حدوہ بن خالد رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں, کیوں نہیں, مجھ سے حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے. وہ حدیث کیا تھی کہ جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا وہ تنگ دستی سے بے خوف ہو جائے گا. میں اسی حدیث مبارک پر عمل کر رہا ہوں, وہ حدیث کیا تھی کہ جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا وہ تنگ دستی سے محفوظ ہو جائے گا. فرماتے میں اسی حدیث پر عمل کر رہا ہوں. یہ سن کر مامون جو تھا, جو میزبان تھا, وہ بڑا متاثر ہوا اور اپنے خادم کی طرف اشارہ کیا, تو وہ 1000 دینار رومال میں باندھ کر تحفہ دینے کے لیے حضرت کے پاس حاضر ہوا. حضرت سیدنا حدوہ بن خالد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا الحمدللہ. حدیث مبارک پر عمل کی ہاتھوں ہاتھ بھر کر ظاہر ہو گئی ہے نا, کتنا ایمان افروز بیان ہے. ہم لوگ شرما حضوری میں رہ گئے, حالانکہ سنت پر عمل کرنا ہے, مطلب حدیث پر عمل کرنا ہے, شریعت کے خوبصورت احکام پر عمل کرنا ہے, چیزوں کو ضائع ہونے سے بچانا ہے, اپنے دسترخوان کا جائزہ لینا. میں نے آپ کو اکیلے کے دیا کہ یہ تھوڑا سا مجھے اس کو لے کر چلنا ہے اس موضوع کو, کیونکہ آخر اتنا بڑا بتا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنی اناج کی فراوانی ہے, پھر کیوں ذخیرہ اندوز, جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کو تو اللہ سے ڈرنا ہی چاہیے جو اناج کے تعلق سے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. پھر یہ پورا ایک ٹاپک الگ ہے اور یہ میرا موضوع, میں اس وقت کو نہیں لے رہا. اس وقت تو آپ کا میری گفتگو ہو رہی ہے, 1-to-1 میں بات کر رہا ہوں آپ سے, ڈائریکٹلی اپنے ویور سے بات کر رہا ہوں. آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اس وقت آئندہ دیکھیں گے, آئندہ سنیں گے, چاہے آپ مدنی چینل کے ذریعے ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہیں, واٹ ایور جس پلیٹ فارم کے ذریعے بھی آپ دیکھ اور سن رہے ہیں, ہم کیوں کھانا ضائع کر رہے ہیں, ہم کیوں روٹی ضائع کر رہے ہیں, اس پر غور کر لیں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان عالی شان میں تشریف لائے, اپنے گھر تشریف لائے, روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو اس کو لے کر پہنچا, پھر کھا لیا, اس کو لے کر پہنچا پھر کھا لیا. فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, اچھی چیز کا احترام کرو, کیونکہ یہ یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی. پلیز پلیز کنسیڈر کریں, بی سیریس. اپنے بچوں کو دیکھیں کتنا کھانا ضائع کر رہے ہیں, اپنی بچیوں کو دیکھیں کتنا کھانا ضائع کر رہے ہیں. ہم چیزوں کو پروپرلی کیئر بھی نہیں کر پاتے. ہمارے بچے کھانا دودھ اس طرح رکھ دیتے ہیں کہ بعد میں وہ چیز خراب ہو جاتی ہے, بدبو ہو جاتی ہے, ضائع ہو جاتی ہے, اس کو کوڑے کا ڈھیر پر پھینکنا پڑتا ہے, جس میں ہماری کوتاہی کی وجہ سے. یہاں میری جو گفتگو ہے اپنی کوتاہی کی وجہ سے, اپنی غفلت کی وجہ سے ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم इन हदीसों पर अमल करने में और इस पर गौर करने में कामयाब हो जाएं कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उम्मे हिराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, दो जहां के सुल्तान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोटी का एहतराम करो कि वो आसमान और जमीन की बरकत से है। जो शख्स दस्तरखान से गिरी हुई रोटी को खा लेगा उसकी मगफिरत हो जाएगी। अमीर सुन्नत की किताब आदाब ताम, उसमें से मैंने चंद आपको रिवायात और हिकायतें बयान करने की सआदत हासिल की है। तो क्या इस बात को मैं समझूं कि हम सीरियसली इसको कोई प्रैक्टिकली अपने घर में करेंगे? इसी तरह दावतों में आप जाते हैं तो दावतों में भी जाकर आप वो है ना माले मुफ दिले बेरे, ये कौन सा हम लोगों ने उसूल पाला हुआ है कि बस बाढ़ देते हैं, मतलब हम तो वो कहते ना कि तकसीम हो जाते काम, तू फ्राई ले आना, बिरयानी ले आना, तो कस्टर्ड ले आना, तू बोतलों पर हाथ साफ कर देना, बोतलें ना निकल जाए हाथ से, वो फला चीज ले आएगा, वो सालन ले आएगा, ये भरकर पूरे लगा, फिर अपनी अपनी समझ से निकाला और छोड़ दिया, और छोड़कर जब खड़े हो गए तो सारा काम सौंप दिया वेटर के हवाले। मैं आपको पर्सनली बात बताता हूं, मुझे ज्यादा दावतों में जाने का मौका मतलब है नहीं, काफी टाइम हो गया मेरे को इस तरह दावतों में जाने का, बहुत कम ही मतलब के तरकीब बनती है। पिछले दिनों मेरे घर के अंदर कोई ऐसा मामला हुआ, तो कुछ मेहमान भी आए थे, खाने की तरकीब बनी। एक तो ना अमीर सुन्नत के साथ हम बैठते हैं खाना खाते हैं, वो एक अपना माहौल होता है, लेकिन एक जनरल एक फैमिली इवेंट होता है, वहां भी मुझे एहसास हुआ कि यार ये क्या हो रहा है कि लोग कितना मतलब के खाने के ताल्लुक से वो चीजें मतलब केयर नहीं कर पाते। तो कई लोगों ने बड़ा केयर किया, माशाल्लाह मैंने देखा कि वो प्लेट भी साफ कर रहे हैं, सब कुछ साफ कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन बाद में कई चीजों के ताल्लुक से मैंने देखा कि यार वो उतना केयर नहीं है, मतलब इतना ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो क्या ही बेहतर हो कि हम मतलब के अपना मिजाज बदलें, क्योंकि हमारा मिजाज घर से बदलेगा तब जाकर हम बाहर बदल पाएंगे। होटलों का जो हाल होता होगा डेफिनेटली वो मुझसे ज्यादा आप ही को डेफिनेटली पता होगा कि इस वक्त जो होटलों में जो हाल होता होगा, बिल तो आपके साथ पूरा लिया ना उसने, जो पूरा आपको उसने चीजें बनाकर दी हैं, बिल तो उसने पूरा लिया है। अगर आपने दो प्लेट ऑर्डर किया, एक प्लेट ऑर्डर किया, चार आदमी का खाना ऑर्डर किया, दस आदमी का खाना ऑर्डर किया, उससे तो लाकर आपके सामने खाना रख दिया ना, और पैसे तो उससे पूरे ले लिए, खाना आपने कुछ खाया तो छोड़ दिया, पार्सल ले जाने का पता नहीं रुझान है या नहीं है। बाज जगह पर तो मैंने देखा है बैरून मुल्क पार्सल ले जाने का रुझान है, बच जाता है तो कहते भाई पार्सल कर दे, तो बाकायदा खाना को पार्सल करके दे दे, तो बच जाए तो खाना पार्सल करके घर पे ले आए अगर वहां को खाना इस तरह का रुझान है, वरना फिर इतना ही खाना मंगाए जितना खाना है, क्योंकि खाना किचन में जाकर भी जाया हो जाएगा। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दावत मदनी चैनल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखा जाता, दुनिया में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में तो फिर भी बहुत सारी जगहों पर हम मतलब कि ये चीजें कवर करने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर तो कानूनी तौर पर है कि जो बच गया उसको जाया करना है, ना वेटर ले जा सकता है, ना माली ले जा सकता है, कोई भी नहीं ले जा सकता, नॉट ना शेफ ले जा सकता है, नथिंग अलाउ ही नहीं है, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, और करोड़ों करोड़ रुपए का खाना जाया किया जाता है। आपने सुना ना 1000 अरब रुपए का खाना कमोबेश दुनिया में जाया किया जाता है, 1000 अरब रुपए की मालियत का खाना। तो मेहरबानी करके अपना जाती तौर पर आप जहन बनाएं, बच्चों की तरबियत करें, नीचे से गिरे हुए जो खाने के जर्रात हैं, खाने की चीजें उठाकर खा लें, और रोटी जो बच गई है उसका इस्तेमाल करें, खाना जाया ना हो, बदबूदार ना हो, खराब ना हो जाए, ये देखें, किसी को देना है तो दे दें कि भाई आप ले जाओ और वो खा ले, उसके बच्चे खा ले खाना, ये अच्छी अच्छी नियतों से करेंगे तो सवाब भी मिलेगा। तो ये मेरा मेन फर्स्ट टॉपिक था, और मैं चाहता हूं कि मैं भी और आप भी हम खाना जाया करने से खुद को बचाएं, और पूरी दुनिया में जो ये प्रॉब्लम इस वक्त मजीद बढ़ रहा है, और जब कोरोना आया, अब कोरोना की वजह से आप देखिए कि फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, महंगाई कितनी बढ़ गई। अच्छा, एक तो ये कि खाना जाया हो रहा है, खाना जाया होने के साथ साथ अनाज महंगा हो रहा है, महंगा होने के साथ साथ आमदनियां कम हो रही है, बिजनेस क्राइसिस आ रहे हैं, इन तमाम तो चीजों के होते हैं, सोचिए कि आगे प्रॉब्लम कितना बड़ा सा हमें फेस करना पड़ेगा कौमों को। हम अपना किरदार अदा ना करें और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए अहकाम के मुताबिक जिंदगी ना गुजारें, जिसका ताल्लुक स्पेशल जो मेरा अभी जो टॉपिक है खाना पीना, ये तो जिंदगी के हर शोबे में अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक ही हमको चलना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी कॉल दें।
सबकामस खबरें सिलसिला देखकर बहुत खुशी हुई। आज का मौजू तो बहुत ही सदमा पहुंचाने वाला मौजू है और इस बार तो कोविड-19 में जो दावत इस्लामी ने लोगों को खाना पहुंचाया वो तो मिसाली किरदार था। निगरान शुरा दावत इस्लामी पर इस्तेकामत की दुआ फरमा दें। अल्लाह पाक दावत इस्लामी को सलामत रखे।
आमीन आमीन, अल्लाह करम फरमाए। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि दावत इस्लामी को अल्लाह ताला ने ये सआदत दी कि इन हालात में भी अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ा करोड़ रुपए का अनाज लोगों तक पहुंचाने की दावत इस्लामी ने सआदत हासिल की और लोगों को एहसास हुआ होगा कि जब खाना नहीं मिलता तो क्या हाल होता है। जब टोटल लॉकडाउन था और अच्छे खासे घरों के अंदर, यानी लॉकडाउन के ताल्लुक से कितनी तशवीश थी कि अगर लॉकडाउन ज्यादा बढ़ गया या और इश्यूज आ गए तो लोग खाएंगे कहाँ से, पियेंगे कहाँ से। तो जो लोग लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हुए वो सोचिए कि जो विदाउट लॉकडाउन भी दुनिया में जो लोग इफेक्टेड हैं, जिन मुसलमानों को खाना नहीं मिलती, जिन आशिका जो आशिका ने रसूल भूख की वजह से परेशान हाल हैं, जरा सोचिए कि उनके बारे में क्या मतलब। मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हम दो निवाले ज़ाया होने से बचाएं। क्या मतलब, वही दो निवाले किसी की जान बचा सकते हैं, वरना भूख की वजह से, तंगदस्ती की वजह से, गुर्बत की वजह से कई लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं, बच्चों को कत्ल कर देते हैं, माज़ अल्लाह, शोर बीवी को मारकर, बच्चों को मारकर खुद भी खुदकुशी कर लेता है, कातिल भी बनता है और खुदकुशी करके हराम हो, दो दो हराम काम करके मर जाता है। हम अपनी सोसाइटी की समाजी जिम्मेदारी पूरी करें प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी समाजी जिम्मेदारियां हैं। जी हाँ, हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझने की कोशिश करे। हम इस तरह ना रहेंगे यार, ठीक है हर चीज नहीं कहता मैं भी फर्ज है वाजिब है, या खुदा ना खासा मैं ये कह रहा हूं कि आप हर चीज में गुनाहगार हो रहे होंगे, लेकिन सवाब कमाने का, हमदर्दी करने का, खैर ख्वाही करने का, उम्मत महबूब के काम आने का कोई इसके भी तो मतलब के वो बयानात मौजूद है, यानी अदीन उनसी अदीन खैर ख्वाही का नाम है। जी कॉल दें।
ऐसे बबी अब गजाई किल्लत के बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा रहे थे। हसब बाज लोगों को ख्याल होता है कि ये जो गरीब होते हैं ये तो इतना जाया नहीं करते, अमीर लोग जाया करते हैं। देखने में आया है कि जो गरीब झोंपड़ियों में रहने वाले हैं इनमें भी खुराक को बहुत ज्यादा जाया करना पाया जाता है, ये भी खाने जाया भी करते हैं, बल्कि शायद कई अमीरों से ये ज्यादा खाना जाया करते होंगे। तो आप इस बारे में क्या फरमाते हैं, चाहे वो अमीर है वो चाहे गरीब है, खुराक को कैसे महफूज हम बना सकते हैं, पका हुआ खाना कैसे बचा सकते हैं कि चावल नाली में नजर ना आए, किसी मुसलमान के पेट में वो खाना उतर जाए जाया ना होने से पहले पहले, तो इसके बारे में भी कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दें।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमीर सुन्नत के काफी वीडियो क्लिप्स आपको वैसे ही मिल जाएंगे इंशाल्लाह इस मौजू पर। बड़ी दिल जलाकर अमीर सुन्नत ने इस हवाले से कौम की तरबियत फरमाने की कोशिश की है, लेकिन जाहिर है कि गरीब हो या अमीर हो खाना तो किसी को भी जाया नहीं करना चाहिए। तो अमीरों के यहाँ तो अभी ये होता है कि बच गया तो गरीब को दे दिया, अब गरीब के यहाँ बच्चा तो किसको देंगे। अच्छा, इनके यहाँ बाद अवकात कहीं होंगे फ्रिज नहीं होता, अमीरों के बड़े लोगों के या नॉर्मल लोगों के यहाँ फ्रिज होता है, फ्रिज में डाल दिया, हर एक यहाँ फ्रिज हो ये भी जरूरी नहीं है। मेरा तस्वुर एक इन उन कच्ची आबादी और खुले एरिया में रहने वालों के लिए, जिनके लिए वैसे ही मतलब के काफी ज्यादा मसाइल होते, कईयों के घरों में और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो खाना चाहे गरीब हो या अमीर हो किसी को भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, पतीले बिल्कुल साफ कर लेने चाहिए और उसको पूरी तरह खुरच खुरच कर खाना निकाल लेना चाहिए। सालन भी पूरी तरह मतलब जे ऐसा साफ हो जाए कि जैसे कि अगर आप धोएं तो आपको ये यकीन हो कि ये धोने के बाद गिज़ा जिसको कहते हैं गिज़ा नाली में नहीं जाएगी, खाने की चीज़ को नाली में नहीं जाएगी, ड्रेन में नहीं चली जाएगी, ये याद रख लें। चाहे वो आप कोई भी बर्तन धो रहे हैं उसको चाट लें पूरे के पूरा, वैसे भी उंगलियां बर्तन चाटना तो हदीस पाक में आया है और इमाम गजाली के इरशाद के मुताबिक जो खाना हम खाते हैं जिस बर्तन में अगर उसे हम धोकर पी लेंगे तो एक गुलाम आजाद करने के सवाब का वो हकदार बनता है। तो ये खूबसूरत सी तालीम, आदाब ताम आप किताब पढ़ लें, امیل سنت کی، انشاءاللہ اس میں آپ کو یہ بہت ساری چیزیں ملیں گی اور ہم کھانا ضائع کرنے سے اللہ نے تو بچ جائیں گے. اس پہ اسراف کسے کہتے ہیں اور اس کی کئی اقسام بھی لکھی ہوئی ہیں. جی کال دیں.
آج کا جو موضوع ہے کھانا نہ گرا کے کھانا، اس کے حوالے سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. ہم کھانا نہ گرا کے کھائے، اس کا کچھ وظیفہ بتا دیجئے، میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیجئے.
کھانا ضائع نہ کرے، اس کا کوئی مجھے وظیفہ تو پتا نہیں ہے، سوچ بننی چاہیے، بس ذہن بننا چاہیے. آج کل تو وہ آتے ہیں نا، وہ سفرے کہلاتے ہیں، وہ ڈسپوزیبل دسترخوان آج کل آ رہے ہیں، تو ڈسپوزیبل دسترخوان بچھا لیتے ہیں اور ڈسپوزیبل پلیٹیں ڈال دیں، جو بالکل ضائع کرنے کا عرف ہے اس کو کھایا اور پھینک دیا. اب ڈسپوزیبل پیالے، ڈسپوزیبل پلیٹیں، ڈسپوزیبل دسترخوان، جتنا کھایا اتنا کھایا، جو دسترخوان پر رکھا ہے رکھا ہے. جب کھانا کھا کر سب چلے گئے، جو روٹی، کھانا، چاول، غذائیں، طرح طرح کی نعمتیں جو دسترخوان پر رکھی ہوئی ہیں، دونوں طرف سے اٹھایا، اٹھا کر ملایا، اب جو اس میں مل گیا مل گیا، اس کو لپیٹا اور سیدھا جا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں بعض جگہوں پر پاکستان کے باہر میں، نہ جگہ مقام میں کیسے آپ کو بتاؤں، بہت ساری باتیں جو دیکھی ہوئی ہیں اور ہر جگہ بولنے کا اور سمجھانے کا موقع بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ ہوگی تب جب عادت ہماری ہمارے گھر سے بدلے. میں جب بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں نا، گھر سے اپنے مزاج کو بدلیں پلیز. بالکل بہت بڑا آپ کو جناب، آپ یہ 200-500 لوگوں کی دعوتوں میں کوئی مدنی انقلاب لے کر آ جائیں تو جناب یہاں کر لیں، تو ملک کی سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر کریں. میں آپ کو انڈیویجل، پرسنل، یور فیملی، اور ایک آپ کا گھر کا جو ایک چھوٹا سا دسترخوان ہے جس پر آپ 6-7-10 گھر کے لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں پلیز وہاں پر کنٹرول کر لیں، وہاں پر تربیت کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ ہزاروں یا لاکھوں لوگوں نے اپنے گھر کے دسترخوان، گھر کے کچن کو، گھر کے برتنوں کو اور اس میں موجود کھانے کو، فریج میں موجود کھانے کو ضائع ہونے سے بچا لیا اور خود کھا لیا یا جس کو کسی کو کھلا دیا کہ ضائع نہ ہو، اگر اس پر عمل کر لیا، یہ تعداد جو اربوں کی بیان کی جاتی ہے، یہ رب نے چاہا تو لاکھوں تک، لاکھوں سے ہزاروں تک یہ آتی چلی جائے گی نیچے. ہم ٹرائی تو کریں پلیز، پلیز ٹرائی کریں. میں اب دوسرے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں. دوسرا موضوع بھی میرا جو ہے نا، وہ بڑا اس میں یہ ہوا ہے کہ واقعہ مزیدار نہیں ہے. نیاز تقسیم کرنے کے نام پر جس طرح گھر کو لوٹا گیا ہے، اور یہ سنا یہی ہے کہ یہ میڈیا میں ٹھیک ٹھاک یہ ٹاپک بیان ہوا ہے، لیکن میں اسے کچھ اور چیزیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. پہلے دیکھتے ہوا کیا تھا.
کراچی میں ڈاکو لنگر دینے کے بہانے گھر کا صفایا کر گئے. کراچی میں لیاری بہار کالونی کے علاقے میں مسلح ڈاکو لنگر دینے کے بہانے گھر میں داخل ہوئے اور طلائی زیورات سمیت نقد رقم لوٹ کر فرار ہو گئے. پولیس کے مطابق دو مسلح ڈاکوؤں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، گھر میں لنگر دینے کے بہانے داخل ہو کر واردات کی. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان جمعے کی نماز کے وقت اسلحے کے زور پر گھر میں داخل ہوئے اور 1.5 لاکھ روپے مالیت کے طلائی زیورات اور 50,000 نقد رقم لے کر فرار ہو گئے. پولیس کی جانب سے واقعہ کا مقدمہ جاکیواڑہ تھانے میں درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے.
اس پر آئیے ایک انٹرویو بھی ہمارے پاس.
میرا نام فہد مغل ہے، میری رہائش بہار کالونی لیاری میں ہے. 12 ربیع الاول کو ایک واقعہ ہو گیا تھا. جب ہم نماز کے لیے 12:30 بجے میں نکلا تھا اور میرے بعد میرے ابو 1 بجے نماز جمعہ کے لیے نکل گئے تھے، تو نیاز کے لیے کوئی 2 لڑکے آئے ہوئے تھے دینے کے لیے، تو وہ گیٹ کھول کے اندر گھس گئے. تو کچھ نئے سوٹ تھے اور جیولری وغیرہ تھی اور کیش کچھ رقم تھی 50,000 کے لگ بھگ، اور یہ ساری چیزیں وہ لے کے چلے گئے. یہ پورا کمرہ جو ہے الٹا ہوا ہوا تھا، سارا سامان بکھرا ہوا تھا. جب میں اندر انٹر ہوا تو یہ بالکل یہاں پہ پورا جو ہے سامان وغیرہ سب بکھرا ہوا تھا اور یہ چیزیں ساری باہر گری ہوئی تھیں. آخر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ربیع الاول کے صدقے میں جان محفوظ رہی، اللہ کا بہت کروڑا احسان. اور آخر میں میں دعا کے لیے عرض کرتا ہوں کہ نگران شورا نعم البدل کے لیے کوئی دعا کر لیں تو نوازش ہو جائے گی. جزاک اللہ.
سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے اور جو کچھ گیا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہتر آپ کو عطا فرمائے اور اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق بھی دے اور صبر کر کے اجر کمائیں اور اجر کر کے اللہ اجر بھی نصیب کرے ثواب نصیب کرے اور اس کے بدلے جنت بھی عطا ہو جائے اور شکر کے پہلو بھی سامنے ہے کہ ظاہر ہے کہ جان بچ گئی اور بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ بھی رکھا ہوگا اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ میلاد مبارک کا صدقہ ہے کہ بہت کچھ چیزیں بچ گئیں, جمعہ کا صدقہ تھا بہت کچھ چیزیں بچ گئیں, لیکن اب یہ جو خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے پتہ یہی چلا ہے مجھے بتایا کہ یہ اور بھی میڈیا پر یہ خبریں شیئر ہوئی ہیں, لیکن یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو احتیاطی پہلو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اول تو یہ کہ ماشاء اللہ یہ ایک اچھا ان کی سوچ ہوئی کہ جمعہ کی برکت سے یا میلاد پاک کی برکت سے ربیع الاول کی برکت سے بہت کچھ بچ گیا, یہ ایک خوبصورت پہلو ہوتا ہے. چلتے پھرتے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ہمارے بڑے برے شروع سے کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو یہ بڑی خوبصورت دلاسے اور تسلی والی بات کرتے ہیں کہ چھوٹی میں ٹل گئی, چھوٹی میں ٹل گئی, یعنی کوئی بڑی آفت آ رہی تھی چھوٹی میں نپٹ گئی, تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ چھوٹی میں چیز بھی نپٹ جائے اور ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کا کرم نہیں طور کیا ہے. مگر یہاں پر میں یہ بتاؤں کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. یہاں پر بائک کے ذریعے ہوم ڈیلیوری کے ذریعے بہت سارے لوگ گھروں پر آتے ہیں, پوسٹ دینے کے لیے آتے ہیں, کوئی لیٹر دینے کے لیے آتے ہیں, کوئی ڈرافٹ دینے کے لیے آتے ہیں, کوئی پیپر دینے کے لیے آتے ہیں, کوئی ہم کھانا آرڈر کرتے ہیں تو وہ کھانے کی ڈیلیوری کوئی دینے کے لیے آ رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی تھی کہ جو اس وقت ہوم ڈیلیوری جو ہے نا یہ بہت بڑا ایک بزنس ہے, ہوم ڈیلیوری ایک ٹیک اوے ایک بہت بڑا کام ہو چکا ہے کہ اب لوگ لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. لیکن اب ہوم ڈیلیوری جب سے یہ آن لائن سسٹم زیادہ شروع ہوا ہے, اب آپ آن لائن بکنگ کراتے ہیں, آن لائن پرچیزنگ کر رہے ہیں اور آن لائن پرچیزنگ کرنے کے بعد آپ کو ہوم ڈیلیوری دی جاتی ہے, اور ظاہر جب ایک چیز جا رہی ہوتی ہے تو وہاں بھی 10 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو سن رہے ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں کے گھر میں یہ چیز جا رہی ہے, تو اب جو آپ نے منگوایا وہ آیا نہیں آیا بات کی بات ہے, اس کے علاوہ کوئی اور آ گیا اور وہ خدا نہ خاصہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے, تو معلومات پوری پر پروپر لیں, پروپر آپ پہچان پیدا کریں, کوئی ایسی کوڈ ورڈنگ رکھ لیں کہ ان تمام تر احتیاطوں کے ساتھ کریں تاکہ آپ کو بہت بڑے نقصان سے بچ سکیں. اس طرح دکانوں کو لوگ لوٹ لیتے ہیں, گھر بار کو لوگ لوٹ لیتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو لوگ لوٹ لیتے ہیں. تو اس خبر سے جو ابھی ہم نے آپ کو دکھائی, اس خبر سے ہم خبردار ہو جائیں کہ کوئی بھی گھر میں ایسا واقعہ نہ ہونے پائے کہ جس کی وجہ سے آپ کو کوئی خدا نہ خاصہ کو بہت بڑا نقصان کا منہ دیکھنا پڑے. تو وہی اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, تو اپنی کوئی بھی ایسی کوڈ ورڈنگ یا کوئی ایسا پہچان بنا لیں کہ جس کی وجہ سے غیر آدمی اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے. ورنہ ہو رہی ڈیلیوریاں اور کمپنی پوری کوشش کرتی ہوں گی کہ کوئی ایسا آدمی یہ نہ رکھیں. یہ میری ایک اپنی سوچ ہے کہ کوئی بھی کمپنی آئے چاہے ہوٹل ہو یا کوئی اور کمپنی ہو جو ہوم ڈیلیوری کا کام کرتی ہوں گے تو ڈیفینیٹلی یہ کوشش کرتے ہوں گے کہ کوئی ایسا آدمی نہ رکھا جائے کہ جس کے جو کرمنل مینٹلٹی کا, ورنہ وہ کمپنی کے ہی اپنی پوزیشن خراب ہو جائے گی. لیکن چور کی 14 نظریں, اسی طرح گھر میں پلمبر کا کام ہوتا ہے, الیکٹریشین کا کام ہوتا ہے. اچھا بعد اوقات یہ لوگ کام کر کے چلے جاتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ یہی کچھ کریں, مگر یہ بہت ساری چیزیں ان کی نظروں میں آ جاتی ہیں. تو میں مزید کیا عرض کروں, آدمی ہو اوپر رہ کر کام کرائیں, ضرورت کی جگہ پر لے کے جائیں, جہاں لے کے جائیں وہاں کوئی قیمتی چیزیں نہ رکھی ہوئی ہوں. مجھے نہیں اندازہ ہو رہا کہ میں پراپرلی جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں کر پایا ہوں کہ نہیں کر پایا, اور جو میری سوچ ہے کہ سننے دیکھنے والے اس کو کس اس انداز سے لے لیں وہ میں آئی ڈونٹ نو کہ میں اس کو پراپرلی ڈیلیور کر پایا ہوں کہ نہیں کر پایا. البتہ ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد شاید سمجھ بھی گئی ہو اور احتیاط بھی کرے, تو یہ خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور پرابلم ہے, فراڈ اور دھوکے کی بات ہو رہی ہے, وہ ہے سائبر کرائم. یہ بھی ایک ورڈ ہے سائبر کرائم. یہ سائبر کرائم کیا ہے, और ये क्यों इतना बढ़ रहा है और इससे लोग बहुत ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं और इसके कानून बन रहे हैं, आइए देखते हैं।
मुल्क में साइबर क्राइम और खुदकुशी के वाकियात में इजाफा। मौजूदा दौर की डिजिटल इजादात के फवायद अपनी जगह, मगर इसके मुस्बत और मनफी पहलुओं को नजरअंदाज कर देना भी तबाहकुन हो सकता है। इंटरनेट पर मामूली सी बेएहतियाती आपको गहरे दलदल में ले जा सकती है, जिसका अंजाम समाजी जिल्लत और रुसवाई या फिर खुदकुशी पर होता है। एक तरफ तो सोशल मीडिया का नेटवर्क फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और दीगर डिजिटल जराए हमारे लिए राब्तों और तबादला ख्याल का अहम जरिया है, लेकिन दूसरी जानब इन्हीं जराए को झूठ और मनफी सरगर्मियों के फरोग के लिए भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती इदारे FIA का कहना है कि मुल्क में 7,40,00,000 अफराद इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा इंटरनेट से जुड़े जराइम में भी इजाफा हो रहा है। FIA हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता बरस 2019 में साइबर क्राइम्स के मुतालिक 56,000 के करीब शिकायत मौसूल हुई। मौसूल होने वाली शिकायत में अक्सर सोशल मीडिया से मुतालिक थी, जिसमें गैर अखलाकी वीडियोज बनाकर ब्लैकमेल करना, जिंसी इस्तेहसाल, ऑनलाइन फ्रॉड और इनामी रकम निकलने के जाली पैगाम समेत साइबर क्राइम के दीगर शिकायत शामिल हैं। रवां बरस 2020 के पहले 4 महीनों में पाकिस्तान के 3 अहम शहरों कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में साइबर क्राइम के जो मुकदमा दर्ज किए गए, इनमें से 76 औरतों को ब्लैकमेल करने से मुतालिक थे। ब्लैकमेलिंग के मामलों में केस दर्ज करवाने वाली भी औरतें ही थीं, जबकि ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खुदकुशी करने के केस भी रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता बरसों में इब्तिदान मर्द औरतों की वीडियोज बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे, आजकल इस काम में औरतें भी शामिल हो गई हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के कुछ केसेस में मर्दों को मर्दों ने ब्लैकमेल किया, जिसकी ताजा तरीन मिसाल हाल ही में कराची में होने वाली पुलिस कार्रवाई है, जिसमें नौजवान लड़कों से ज्यादती और उनकी काबिल एतराज वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने वाले 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मदनी चैनल के नाजरीन, पाकिस्तान पेनल कोड 376 और 377 के तहत साइबर क्राइम में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
ये कानून बने हुए, मैं थोड़ी सी आपको इसकी तफसीलात अर्ज करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप इस जो साइबर क्राइम की तफसीलात आपके सामने आ जाएंगी। हमारे नाजरीन से हो सकता है कि बाज़ों के लिए नया वर्ड हो, लेकिन चूंकि अब इंटरनेट का इस्तेमाल, ऑनलाइन परचेजिंग का इस्तेमाल, कार्ड्स के जरिए पैसे निकालना या खर्च करने के ताल्लुक से दुनिया भर में ये एक सिस्टम राइज हो चुका है। इसी तरह ऑनलाइन इंफॉर्मेशंस ली जाती हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशंस दी जाती हैं, फॉर्म फिल करके दिए जाते हैं, डेटा चोरी किया जाता है, डेटा पर बहुत बड़ा एक पूरी एक दुनिया बन चुकी है। तो पर्सनल भी और कंपनीज भी और इदारे भी ये बहुत ज़्यादा इसमें फंसने के इसके चांसेस रहते हैं। एक है आइडेंटिटी थेफ्ट, ये साइबर क्राइम की मैं थोड़ी सी तफसीलात बता रहा हूँ। इसकी वजाहत ये कि किसी की जाती मालूमात को उसके मोबाइल या कंप्यूटर से चुरा कर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना। हमारे अपनी इंफॉर्मेशन हम अपने कंप्यूटर पर, अपने डेस्कटॉप पर या अपने जो भी डिजिटल जो हमारे पास सिस्टम है, मोबाइल आजकल स्मार्टफोन है तो हमारी बहुत सारी चीज़ें इस पर होती हैं और लोग सेव कर लेते हैं, और इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने बहुत मतलब के महंगे महंगे सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं ताकि इनके बायर की, इनके कस्टमर की इंफॉर्मेशन लीक ना हो। लेकिन चोर की 14 नजरें होती हैं, वो किसी ना किसी तरीके से किसी की जाती मालूमात को इसके मोबाइल या कंप्यूटर से चुरा लेते हैं और ये इंटरनेट के जरिए ये सारे काम होते हैं। जैसे कि वो चाबी खोल के किसी घर में दाखिल होते हैं ना, तो ये इंटरनेट का इस्तेमाल करके किसी के कंप्यूटर में, इनके पास जो भी तरीकेकार होता है, इसकी इतनी नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन ये हैं लोग, इसको साइबर क्राइम कहते हैं और इस तरह की ये इंफॉर्मेशन और चीज़ें चोरी कर लेते हैं, जिससे फिर उनको नुकसान पहुंचाते हैं। एक है डेबिट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, किसी के अकाउंट या उसके डेबिट या क्रेडिट कार्ड की मालूमात हासिल करके माली फवायद उठाना। इसके बाकायदा आपको पता है कोड होते हैं, नंबर होते हैं, अब मतलब कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, वालिद माँ का नाम, तो डेट ऑफ बर्थ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लीकेज हो जाती हैं। बाद घर का भेदी ये बहुत सारी चीज़ें बयान कर देता है, तो उससे फिर वो इंफॉर्मेशन ले ली जाती हैं और फिर लाखों करोड़ रुपयों का उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। जिनका ये इस्तेमाल है वो मेरी बात समझ रहे होंगे। एक है साइबर स्पियोनेज, ये भी एक जो समझे कि साइबर क्राइम की एक किस्म है। इसको यूं डिटेल में इसको बयान किया गया है कि किसी हुकूमती इदारे, हुसास इदारे, सेंसिटिव जो इदारे होते हैं, या किसी बड़ी कंपनी की मालूमात को हैक कर लेना, हाईजेक, तो आपने सुना होगा ना, जो जहाज को कब्जा कर लेते थे, ये कंप्यूटर हैकर कहलाते हैं, वो हैक करना या इस पर अपनी मर्जी का मवाद डाल देना, वो उसको ऐसा सिस्टम के साथ ले लेते हैं कि फिर वो अपनी मर्जी की बातें डाल देते हैं। ये जो हम आपको कहते हैं ना कि ये चीजें इतनी काबिल एतमाद नहीं होती कि किसकी साइड में घुसकर कौन सी चीज उसकी निकाल कर कौन सी चीज डाल दी जाए, ये मतलब कि ये पूरी कंप्यूटर की और इंटरनेट की दुनिया है। तो ये भी एक साइबर क्राइम के तौर पर बयान किया जाता है। एक साइबर क्राइम के तौर पर एक बात जो बयान की जाती है वो सॉफ्टवेयर पायरेसी है। इसको यूं डिटेल में इसकी वजह यह है कि अमूमन सॉफ्टवेयर बनाने वाले अपने सॉफ्टवेयर को बेचते हैं। ये भी एक जो समझे कि कंप्यूटर इस्तेमाल करने के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं और इसका एक अपना सिस्टम है, इसकी गैर कानूनी कॉपी बना के इसका इस्तेमाल या इसको फरोख्त करना, जिस तरह हम अपनी कॉस्मेटिक्स की या बहुत सारी चीजें आइटम्स होती हैं, पेन की कॉपी बना लेंगे तो कई चीजों की कॉपियां बन जाती हैं, आप जिस टीवी को देख रहे हैं उस टीवी की भी हो सकता है कॉपी बन जाए, वो टीवी किसी बड़ी ब्रांड कंपनी का टीवी है, उसी का ब्रांड चोरी कर उसका, तो इस जिस तरह ये आम प्रोडक्ट की कॉपीज बन जाती है ना, शैम्पू की कॉपी बनती है, साबुन की कॉपीज बन जाती है, बल्कि अब तो फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी थर्ड कॉपी की बारी आ गई है, कि कहते हैं यार ये फर्स्ट कॉपी है ये अच्छी है, ओरिजिनल तो दूर की बात है, ओरिजिनल लेने जाएंगे कहते चमड़े उतर जाएंगे, बहुत महंगी चीज होती है, घड़ियों की कॉपीज बन जाती है, ग्लासेस की सन ग्लासेस की कॉपीज बन जाती है, धोखे की सूरतें बहुत बनती है और ये उसी के नाम से बेची जाती है मगर ये उस कंपनी की नहीं होती और लोगों को शायद इसकी इतनी अंदाजा नहीं होता, वो सस्ते के नाम पर ले लेते हैं मगर वो उसकी कॉपी होती है और वो उसके राइट्स नहीं होते उसके पास। जैसे किताबें लिखने वाले राइट है जुमला हुकूक महफूज हैं, तो आप किसी की किताब का यूं उठाकर मवाद आप चोरी नहीं कर सकते, इस तरह किसी की चीज को आप कैसे कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो सॉफ्टवेयर बनाती है कंपनी, ये करोड़ों रुपए का सॉफ्टवेयर बनते हैं जिसके जरिए अकाउंट्स का काम किया जाता है, इसके जरिए दुनिया भर की चीजों का काम किया जाता है। तो बड़ी मुश्किल से कंपनी अपनी पूरी सलाहियतें ताकतें लगाकर एक सॉफ्टवेयर बनाती है जो कंप्यूटर में यूज होता था, लोगों की जिंदगियां बातों का उससे आसान हो जाती हैं, बहुत सारा काम उसके अंदर मैनेज हो जाता है, फिर उसी की कोई चोरी कर लेता है, कॉपी बना लेता है और उसको उसी के नाम से बेचना शुरू कर देते हैं और ये साइबर क्राइम में शामिल है। एक है साइबर एक्सटॉर्शन, किसी बड़ी शख्सियत या इदारे की वेबसाइट या उसकी मालूमात पर कब्जा करके उसको दोबारा वापस करने के लिए रकम का मुतालबा करना, ये सब कंप्यूटर के जरिए हो रहा है, ये फिजिकल नहीं हो रहा। फिजिकल तो किसी का बच्चा उठा लिया कह दिया पैसे दोगे तो दूंगा, तावान मांगते हैं, किसी की कोई चीज उठा ली बोला ये करोगे तो दूंगा, किसी घर पर कब्जा कर लिया कि भाई इतने पैसे दोगे तो खाली कर दूंगा, ये इदारे की मालूमात होती है, इंफॉर्मेशन होती हैं, वो इंफॉर्मेशन को ये चोरी कर लेते हैं उसके कंप्यूटर में इंटरनेट के जरिए घुसकर, और उसको चोरी करने के बाद अब उस इदारे को ब्लैकमेल करते हैं कि या तो तुम हमें इतने पैसे दे दो या हम इसको फिर पब्लिकली डाल देंगे। इसी के आगे एक और है साइबर ब्लैकमेलिंग, किसी की जाती वीडियोस या तस्वीर या उसका कोई हुसास को सेंसिटिव मवाद चुरा कर उसको माली तौर पर ब्लैकमेल करना या इससे दीगर फवायद उठाना, अमूमन उसका शिकार खवातीन होती हैं। आपको याद होगा अमीर सुन्नत ने भी और मैं भी और हमारे दीगर मुबल्लिगीन भी मदनी चैनल सोशल मीडिया के जरिए आपको एक बड़ी वो बताते हैं, मैं एक मिनट अपना वो मोबाइल लेकर मैं आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, ये मोबाइल फोन है ठीक है, तो ये भी सॉफ्टवेयर बेसिस के ऊपर ही चल रहे होते हैं, ये पूरा एक सूरत सिस्टम है जिस पर ये सारी चीजें चल रही होती हैं। अब हम अपने इन मोबाइल फोन में अपनी चीजों को सेफ करते हैं, या तो मोबाइल फोन चोरी हो जाता है, खुदा ना खास्ता कहीं गिर जाता है, कहीं रह जाता है और आप बोले मैंने इसका पासवर्ड या पिन कोड लगाया हुआ है, वेरी सॉरी टू से सब खुल जाता है और तकरीबन चीजें जो है ना वो बाहर आ जाती हैं, डिस्क्लोज हो जाती हैं कईयों के मोबाइल चोरी हो जाते हैं, जेब से निकाल लिए जाते हैं, जनाजों में अब तो मोबाइल चोरी हो जाते हैं, और रिकवर होने की परसेंटेज ना होने के बराबर है। यानी बहुत सारे जना फला नंबर है, फला नंबर है, फला इदारे में देते हैं, ब्लॉक कर दें, ये कर दें। अब तक मेरे मुशाहदे और तजर्बे की बातें ये हैं कि रिकवरी जो है ना वो ना होने के बराबर है। फिर इसका डेटा चोरी हो जाना, हमने आपको कई मरतबा प्यारे इस्लामी भाइयों बयान किया, मैं अपनी इस्लामी बहनों से भी अर्ज करता हूं, प्लीज मोबाइल फोन में, अपनी ईमेल्स के अंदर, अपने किसी भी लैपटॉप में, अपने किसी भी डिजिटल इक्विपमेंट या डिजिटल पीसीस के अंदर प्लीज अपनी कोई ऐसी चीज शेयर ना करें। प्लीज मेरी बात को समझिए, आप यूं समझिए कि आपके घर में आपकी कोई मतलब कि ऐसी चीजें, ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसी ऐसी तस्वीर, खुदा ना खास्ता, समझाने के लिए कह रहा हूं, ये जो तस्वीर जो हम प्रिंट के जरिए देखते हैं इसकी शरण इजाजत नहीं है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम रखते हैं, कोई आए चोरी करके चला जाए, फिर आपको ब्लैकमेल करता रहे, आपकी वीडियोस घर से ले जाए, पहले वीडियो कैसेटें घर में उमूमन रहा करती थी, कोई ऐसी चीज आपने कमजोरी बना ली, तो आपके पास हैंडी कैमरा है, वीडियो कैमरा, उसके जरिए आपने कोई ऐसी अपनी प्राइवेट चीज आपने कर ली, आपकी फैमिलीज की कोई ऐसी फोटोग्राफ आपने ले ली हैं, मियां बीवी अपनी फोटोग्राफ डाल देते हैं, लड़कियां अपनी फोटोग्राफ डाल देती हैं, पता नहीं क्या क्या कर रही होती हैं, माजल्ला सुमा माजल्ला, अपने माँ बाप को धोखा देकर, दुनिया को धोखा देकर लड़कों से मिलने के लिए चली जाती हैं, बेशरम एक नंबर की बेहया किस्म की ये लड़कियां होती हैं, इनको खुदा का खौफ नहीं होता कि ये किस लाइन को क्रॉस कर रही हैं, ये समझती नहीं है कि यार ये कैसा आदमी हो सकता है कि जो मतलब कि एक लड़की को दोस्त बनाकर उसको मतलब कि उसके माँ बाप को और अपने माँ बाप को दुनिया को धोखा देकर ये घूम रहे होते हैं, इतनी समझ नहीं आती। फिर ये बादों का तस्वीर ले लेते हैं, इनको तस्वीर शेयर कर दी जाती है। मेरा आपको मशवरा है, मंगेतर को भी अपनी तस्वीर शेयर ना करें, क्या मंगनियां नहीं टूटती? शादी के बाद भी चीजों की हिफाजत करें, क्या तलाकें नहीं हो जाती? बात मेरी समझने की कोशिश करें, मैं आपको हया शर्म के साथ साथ एहतियाती तदाबीर बता रहा हूं, आपको नुकसान से बचाने के लिए मैं कह रहा हूं। बशर राजे दिली कहकर जरीलो खार होता है, निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार हो जाता है। पहले कहते हैं दो जो बात तुम्हारी होंठों में नहीं समाई वो किसी के पास क्या महफूज रहेगी, जो बात आपके पास ना रही अब निकल गई अब आप डरते रहें। तो इस तरह अपनी हसास इंफॉर्मेशन को, अपनी तस्वीर को, मैं तो अब भी आपको मशवरा दे रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपके पास मोबाइल है, आप अब भी इसी वक्त विथ इमीडिएट, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं हमदर्दी कर रहा हूं ना, डेफिनेट आप समझ सकते हैं कि मैं आपसे हमदर्दी कर रहा हूं, विथ इमीडिएट आप अपनी इस तरह की तमाम वीडियोस, तमाम इंफॉर्मेशन को, आप अपनी तमाम तर इमेजेस को प्लीज डिलीट कर दें, इरेज कर दें, ना रखें। अगर जरूरत के टाइम पर किसी चीज को कैप्चर करना है, काम लिया और फौरन उसको वहां से डिलीट कर दें, उसको रिसाइकल में भी ना रखें। जी हाँ, इसमें एक सॉफ्टवेयर है रिसाइकल का, वो चीजें आपके पीछे कहीं जाकर महफूज हो जाती हैं, आपने अपने मोबाइल में बैकअप बनाया हुआ है, वो पीछे जाकर बैकअप पर महफूज हो गई हैं। आप कहते हैं कि जनाब मैंने फना मतलब के बहुत जबरदस्त जगह पर अपना डेटा रखा हुआ है, तो वहां से भी डेटा चोरी हो जाते हैं। ठीक है, आपके मेरे जैसे लोगों के इस तरह की कुछ चीजें चोरी, बहुत बड़ा फिर उसके अंदर सिस्टम चाहिए होता है, लेकिन हमारी छोटी छोटी चीजें जो हमारी फैमिली से, हमारी जात से, हमारी इज्जत से, हमारी प्रेस्टीज से रिलेटेड है, हमारी बच्चियों की बातें, हमारे बीवी की बातें हैं, हमारे माँ की बातें हैं, लोग अपनी फैमिलीज की फोटोग्राफ ग्रुप पे शेयर कर ले होते हैं। आई डोंट नो हाउ कैन दे डू इट, आई डोंट रियली, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कर लेते हैं, कि कैसे अपनी फैमिलीज की फोटो शेयर कर लेते हैं, किस तरह डाल देते हैं, और किस तरह ये औरतें इस चीज को रवा रखती हैं और गवारा कर लेती हैं कि यार ये हो गया, लोगों को मतलब किस चीज की दावत दे रहे हैं। चलो बहुत शरीफ आदमी जिसको आपने दिया है, फिर भी उसको बदनिगाही की दावत क्यों दे रहे हैं, क्यों उसको मतलब कि आप अपनी बहन की इस तरह जिसको देखना नाजायज हो, मतलब कि क्यों बहन की, अपने घर की औरतों की तस्वीरें, फोटोग्राफ्स और इस तरह की मूवी शेयर करें, वाई वाई شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی ہے نہیں. میں آپ کو دونوں طرف کوشش کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا خوف بھی، اور یہ جو بے عزتی کے طریقے چور لٹیرے اور سائبر کے ذریعے جو اس وقت جو چوریاں ہو رہی ہیں، میں آپ سب ہر حوالے سے آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. خوف خدا پراپرلی، عشق رسول صحیح معنی میں، اور شرم و حیا صحیح معنی مل جائے، اور احتیاطی سوچ بن جائے، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں یہ ساری چیزیں درست ہو جائیں گی. اور یہ میرا سمجھے کہ بہت مین ٹاپک ہے جو میں آپ کو بتانا، یہ میں نے یہ ساری چیزیں میں نے آج پڑھی ہیں. سائبر کرائم کو میں جانتا تھا، مگر سائبر کرائم کی یہ جو دیر از اے سم کائنڈس آف سائبر کرائمس، وہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. لیکن کیا آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی جب خدا نہ خواستہ آپ کہیں بلیک میل ہو رہے ہوں گے، پھر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کلپ یاد آئے گا کہ یار سمجھایا تھا میں نہیں سمجھا، یا آپ کے جیب سے کوئی موبائل چوری، یا کندھا دیتے نا جنازے کو، کندھا دیتے ہیں موبائل نکال لیتے ہیں، ہم گلے ملتے ہیں موبائل نکال لیتے ہیں، اور پھر وہ بیچنا اپنی جگہ پر، یہ تو ایک الگ کام ہے، اللہ ان سے بھی بچا کر رکھے کہ جائیں گے یہ بیچ دیں گے. اب جس کو بیچا وہ بھی کوئی دکاندار ہوگا، چلو اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے جو لے کر چلا گیا، جس کو بیچا وہ بڑا مطلب کہ وہ ماہر آدمی ہے. موبائل تو یہ دو چار دس پندرہ پچیس پچاس ہزار کا بیچ دے گا، مگر اس کے اندر خدا نہ کرتا کوئی ایسا ڈیٹا نکل آیا، کوئی ایسی ویڈیوز نکل آئی، آپ کے کانٹیکٹس نکل آئے، اس نے آپ کو فوٹو بھیجی کہ اتنے پیسے دو تو پھر میں کروں گا، بچیاں خودکشی کر رہی ہیں اس میں. Can you believe me? Yes. ہماری بچیاں خودکشیاں کر رہی ہیں. میں اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں، اپنی بچیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس ذریعے سے کئی لڑکیوں نے خودکشیاں کی ہیں، انہوں نے اعتماد کر کے کسی کے ساتھ یہ اپنی چیزیں شیئر کی ہیں جو کہ ان کو بالکل جائز بھی نہ تھا، وہ کسی پر اعتماد کر گئی. وہ چلو اعتماد کا آدمی تھا، مگر اس کو بھی بھیجنا جائز تھوڑی تھا جس کا میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اس کے ذریعے کسی کو، کیونکہ یہاں تو دوستوں میں شیئر ہوتا ہے، دیکھ 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 میرے کو فوٹو بھیجی ہے، اب یار شیئر کر دے میرے کو یار، وہ یا وہ ٹوائلٹ میں گیا تو اس سے نکالیے، پھر گاؤ پھر کر لو جو کرنا ہے. اچھا آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں جتنا مجھے تھوڑا لگتا ہے کہ یار چلو فیملی بیٹھ کے میری بات سن لے گی، لیکن میں اس کے آگے نہیں کہہ پا رہا ہوں. دیکھیے تھوڑا سا مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ یار ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بہویں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، گھر کے فیملی ممبر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو میں وہ بات کوشش کر رہا ہوں کہ میں کچھ ورڈز کا پراپر میں انتخاب کرنے میں، لفظوں کو پراپر انتخاب کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. مقصد یہی کہ آپ کی، میری، ہماری فیملی کی، ہمارے گھر بار کی، ممبرس اور فیملیز کی جو رسپیکٹ ہے، جو پریسٹیج ہے، جو ڈگنیٹی ہے، ہم اس کو کسی طرح سیکیور کر سکیں. آپ اتنی محبت کرتے اپنی فیملی سے کہ آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تو آپ ان کو اپنے موبائل میں کیوں لے کر گھوم رہے ہو آپ؟ وائی؟ پلیز ڈیلیٹ کر دیں. میری بات سمجھے، میں آپ کو، آپ کا ہمدردی کر رہا ہوں. میری اسلامی بہنیں اگر کوئی ہیں تو ڈیلیٹ کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں. نہ میں آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں، واٹس ایپ کتنا ایزی ہے، مطلب کتنا یوز ہو رہا ہے. کئی ایسے ہمارے کانٹیکٹس ہوتے ہیں واٹس ایپ کے جس میں مطلب ہم کافی پرائیویسی چل رہی ہوتی ہے، رائٹ؟ باتیں پرائیویٹ چل رہی ہوتی ہیں، ویڈیوز پرائیویٹلی ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں، یہ پورا سسٹم ہے اور ایک زندگی کا حصہ بن گیا. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ امیڈیٹ جب کام ختم ہو گیا نا، آپ کلیئر کر لیا کریں، تمام تر چیزوں کو کلیئر کر لیا کریں، آپ اپنا وہ پوری سکرین کو کلیئر کر لیں واٹس ایپ کا. آپ بھلے ایک دوسرے کو شیئر کر لیں کہ ٹھیک ہے ہمارا جتنا بھی ڈسکشنز ہو گئی ہیں میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں، ڈیلیٹ ایوری ون بھی ہو جاتا ہے، ڈیلیٹ سنگل بھی ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ پورا پیج ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، پوری اس کا جو کانٹیکٹ ہے اس سے تمام ویڈیوز تمام چیزیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. کوئی آڈیو کسی کو خدا نہ خاصا ایسی چلی گئی، آپ کی رائٹنگ خدا نہ خاصا کسی کو ایسی چلی گئی، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس میں کس قدر ہمدردی چھپی ہوئی ہے. اور چوری نہیں ہو رہے موبائل، کیا موبائل کا ڈیٹا چوری نہیں ہو رہا؟ ایک کیبل کی مار ہے، ایک کیبل کی، ایک کیبل لگا کر فوراً ڈیٹا نکال لیتے ہیں. कोई देर नहीं लगती, मिनटों में डेटा यहाँ का वहां आपकी चीजें इधर से उधर मोबाइल में निकल जाएंगी और आप देखते रह जाएंगे। आपके मैंने फला जगह पर डाल दिया, वो बहुत मजबूत है, अच्छे अच्छे ताले खुल गए भैया, अच्छे खासे ताले खुल जाते हैं। चलो आप और मेरी ये पोजीशन नहीं हो सकता है कि यार आपके मेरे लिए कोई इतनी बड़े बड़े हाई फाई किस्म के लोग हमारे डेटा के पीछे पड़ जाएं, लेकिन छोटे मोटे उठाए गए टाइप के लोग तो होते ही है ना, जिनके हाथ में लग जाए तो फिर मर जाए। जिस तरह अपनी बच्चियों की हम हिफाजत कर रहे हैं कि यार आजकल क्राइम बढ़ गया है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, ये तो हमारा मतलब के मेंटली लेवल हो चुका है। ये तो हमारे अखलाकियात की, हमारे अखलाक का लेवल ये है कि हमारे छोटी छोटी बच्चियों की इज्जतें महफूज नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चों की इज्जतें महफूज नहीं है। इनकी गंदी और काबिल एतराज वीडियोस बनाकर इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, पूरे पूरे ग्रुप्स पकड़े जा रहे हैं, पूरे पूरे ग्रुप्स पकड़े जा रहे हैं, उनके साथ जो आई डोंट नो क्या होता है, वो करार वाकई सजा पाते हैं या रिश्वतें देकर बाहर आ जाते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, मगर सब हो रहा है यार, हो रहा है। आपसे मुझसे कोई बात इतनी खास छुपी भी नहीं है। मोबाइल के जरिए तकरीबन इंफॉर्मेशन शेयर होती है, पोस्टें शेयर हो रही है, वीडियो शेयर हो रही है, न्यूज़ शेयर हो रही होती है। मुझे थोड़ी कम आ रही होती है कि मेरे कॉन्टेक्ट इतने ज्यादा नहीं है, आपको मुझसे ज्यादा आ रही होंगी। हमारे मशवरे में कुछ इस तरह की बातें आई, यकीन माने मेरे लिए पहली बार बात थी, लोग पता होगा सबको, मेरे लिए पहली बार बात थी कि मैं कहा यार सिचुएशन इतनी मतलब के बिगड़ गई है। प्लीज इन जो साइबर क्रिमिनल लोग हैं, जो साइबर के जरिए, इंटरनेट के जरिए, मोबाइल के जरिए, कंप्यूटर के जरिए जो चोरियां कर रहे हैं, प्लीज इनसे होशियार रहिए और अपने हाथों खुद को जाया मत कीजिए। क्या मैं उम्मीद करूं कि आपने अपने मोबाइल से चीजें डिलीट कर दी होंगी? ये एक भाई का अपनी बहनों के साथ, एक बेटे का अपनी माँ, जितनी उम्र की जो मेरी इस्लामी बहनें हैं, बड़े बड़े हैं, मैं छोटा, किसी का छोटा भाई तो किसी का बड़ा भाई, मदनी भाई समझे, अपना इस्लामी भाई समझे, मैं सबके साथ हमदर्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे दावत इस्लामी के जरिए ये मौका मिला है कि मैं आपके घर तक वो बात पहुँचाऊँ कि जो जिसके जरिए आपकी जान माल इज्जत की, दीन और ईमान की हिफाजत हो सके। और अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह करीम मेरी भी और मेरे भी सब आगे पीछे कुंबे घर दावत इस्लामी घर बार हर एक की, हर मुसलमान की जान माल इज्जत आबरू दीन ईमान की हिफाजत फरमाए। मगर वो है ना खुद करदारा इलाज नेस्त, अपने हाथों के की का कोई इलाज नहीं है। कोई बिगैर मुंडेर, यानी छत पर जो हम दीवार खड़ी करते हैं ना, अगर कोई बिगैर मुंडेर की छत पर सोए और गिर जाए तो किसी को मलामत ना करे, अपने आप को मलामत करे कि ये मेरा कसूर था कि मैं इसी छत पर सोया क्यों। खुद करदारा इलाज नेस्त, अपने हाथों के की का कोई इलाज नहीं होता। जो कौम अपनी हालत नहीं बदलती उसकी हालत नहीं बदली जाती, ये निजाम है, ये सिस्टम है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कॉल्स थे,
मेरा नाम मदनी रजा तौड़ी है, मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मेरी दानिश आजकल के जमाने में चोरियां बहुत हो रही है, आप इस पर क्या मदनी खुल देंगे?
हिफाजत करें, आगे पीछे देखें, दरवाजे पर कोई कोड वर्ड रखें, नॉकिंग का कोई कोड वर्ड रखें, दस्तक का कोई कोड वर्ड रखें, दूरबीन लगा कर रखें, जिन्हें आप नहीं जानते उनके ताल्लुक से। ये आप सोच लें अगर घर में कोई मतलब लोग नहीं है तो और ज़्यादा एहतियात करें, अकेले हैं तो और ज़्यादा एहतियात करें, बाहर जाते हैं तो तालों का निज़ाम, लॉक का निज़ाम अच्छा बना कर रखें, चेक करके रखें। और मैं मशवरा ये देता हूँ, और मेरे सुनने से एक बहुत खूबसूरत तरबियत मिली है, कुंडी का निज़ाम रखें, लॉक खुल जाता है चाबी से। अगर आपने दरवाजे के अंदर कुंडी लगाई हुई है तो कुंडी मतलब उसके लिए फिर बहुत मेहनत की, अंदर से कैसे कुंडी, लॉक तो खुल जाता है, डबल लॉक खुल जाएंगे, सिंगल लॉक खुल जाएगा, नॉर्मल लॉक खुल जाते हैं, चाबियाँ बन भी जाती हैं, चाबियाँ कॉपी भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। इस तरह की चीजें भी आ जाती हैं जो लॉक को मत नाकारा कर देती हैं, लेकिन कुंडी कदरे महफूज है। अंदर से कुंडियां लगा कर रखें। घरों के लिए तो मैं ये अर्ज करूंगा, स्पेशली जब भी सोएं कुंडी लगाकर सोएं, अपने अंदर से दरवाजे बंद कर दिया करें, और दूरबीन या कोई ऐसा निजाम रखें कि क्या है, इंटरकॉम का ऐसा सिस्टम रखें जो आप जान पहचान रखते हो, कोई ऐसी चीज ठीक है बाहर रख दें हम उठा लेंगे। तो बहुत सारे ऐसी एहतियाती तदाबीर है जिनके हिफाजती उम्र के मामलात होते हैं, उनके लिए इससे ज्यादा एहतियातें करनी पड़ती हैं। तो ये चीजें, कोई कोई कुछ मांगे, ऐसे इंफॉर्मेशन आ जाती हैं अब तो, कि आप हमारे मोबाइल पर इंफॉर्मेशन आ जाती हैं, आपको ही पता होगा आपका ये फला फला इनाम खुला है, आप अपनी मालूमात दे दें, आप अपना अकाउंट नंबर दे दें, हम जमा करा देंगे। कितनों के इस तरह बेचारों के बर्बादियां हो गई। अगर जीने की ख्वाहिश है कुछ पहचान पैदा कर, कॉल दें।
गणेश शुरू, आप बहुत ही प्यारा आप सिलसिला लेकर आए हैं, इस सिलसिले की बरकत से बहुत अच्छी अच्छी मालूमात हासिल होती है। अभी जो डाकुओं की लूटने के ताल्लुक से खबर चली है, तो निगरानी शुरू से अर्ज है कि बाज़ का ऐसा होता है कि जो मांगने वाले होते हैं वो भी घरों के अंदर तक आ जाते हैं, और जो है वो लोग उनसे डर भी रहे होते हैं कि अगर हम इनको कुछ कहेंगे तो वो बर्दबाद दे देंगे और हमारा नुकसान ना हो जाए, और ये घरों के अंदर तक आ जाते हैं और जाते भी नहीं है। तो इस ताल्लुक से हमें क्या एहतियात करनी चाहिए उनको, ताकि वो घर के अंदर ना आए और हमारा जो है वो सामान वगैरह महफूज रहे, हम याद करें। तो इस हवाले से कुछ मदनी फूल इशार फरमा दें, और मजीद आप क्या इशार फरमाते हैं कि अगर घर की बेल वगैरह जो है बजे तो हमें क्या जो है वो इख्तियार करनी चाहिए और कैसे खोलना चाहिए, कुछ इस हवाले से भी मदनी फूल इशार फरमा दें, और कुछ वजाइफ भी इशार फरमा दें कि चोरी वगैरह से हिफाजत के लिए। जज़ाकअल्लाह खैरा।
वो तो मैंने चंद चीजें बयान कर दी शुरू में लॉक वगैरह के ताल्लुक से। अलबत्ता आपने जो पहला कहा कि यूं घर में कैसे कोई आ जाएगा, और यूं हर एक की बद्दुआ थोड़ी ही होते, मजलूम की बद्दुआ से डरना चाहिए। आपने जुल्म तो किया ही नहीं है किसी के ऊपर, जुल्म ना करें, बद अखलाकी का मुजाहरा ना करें, अपनी चीजों को अपनी हिफाजत, अपनी चीजों की हिफाजत, अपने घर बार की हिफाजत का एक बेहतर निजाम बनाएं। अब तो बहुत सारे इसकी चीजें, कैमरेज लग जाते, कैमरा लग जाते हैं, बहुत सारे इंतजाम किए जा सकते हैं। अगर हम हिफाजत का जहन रखें तो हो सकता है, और ये मेरा ख्याल है इसकी थोड़ा सा भी आप किसी समझदार आदमी से मशवरा करेंगे तो आपको बहुत सारी डिटेल बताएं कर देंगे। इजाजत दीजिए, सल्लु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद।